हरे कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 70। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ दोहराने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, अतिशति चय इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञानयक्षीनतीनाम् इष्ट स्यामिति मे मतिः। अध्येषति च य इमम् धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयक्षीनतीनाम् इष्टः स्यामिति मे मति। अध्येषति च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयक्षीनतीनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। अध्येषति जय इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयक्षीनतीनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। शब्दों का अर्थ देखिए। अध्येषय यानी अध्ययन या पाठ करना, जो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं। च यानी जो भी, या माना जो, एमम माना इस, धर्म्यम संवादम यानी पवित्र वार्तालाप का या संवाद, जो पवित्र वार्तालाप अर्जुन और कृष्ण के मध्य में हुआ है उसका जो अध्ययन करता है या पाठ करता है उसका श्रुति फल बताते हुए भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञेन तेनाहम। ज्ञान यज्ञ मतलब आवयो का मतलब होता है हम दोनों के, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान रूपी यज्ञेना, यज्ञ तेना उसके द्वारा अहम। मैं समझ रहा हूँ भगवान कहते मैं, मेरे हिसाब से वो ज्ञान यज्ञ कर रहा है जो हमारे इस पवित्र संवाद को पढ़ता है। और इष्ट श्याम, इष्ट मतलब पूजित, श्याम होऊंगा इति इस प्रकार मैं, मेरा मत, मति मना मेरा मत है। भगवान अपनी राय बता रहे हैं, अपना डिसीजन दे रहे हैं, कह रहे हैं, अनुवाद देखिए, और मैं घोषित कर रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं ये घोषणा कर रहा हूँ, मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो ये पवित्र संवाद को पढ़ता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है, ज्ञान यज्ञ कर रहा है, मैं ये घोषणा कर रहा हूँ। इन पवित्र शब्दों को समझने के लिए गुरु और गौरंग से प्रार्थना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे। श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वशमश्च श्रीरूपं साकृशातं सहगणरघुनाथ वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिभ्ये वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च अतीतनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथ राज श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। भगवान श्री कृष्ण अब हमें श्रीमद् भगवत गीता के श्रुति फल के विषय में बता रहे हैं। कल भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रीचिंग की इम्पोर्टेंट बताई कि सबसे ज्यादा प्रिय मुझे कौन है भगवान ने कल। अब क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, और कृष्ण ने हमें पहले कल क्या बताया कि ये इदं परमं गुह्यं मद् भक्तेष्व विदास्यते भक्तिमयी पराम कृत्वा मामेव इष्यति संशय। भगवान ने कहा जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आएगा। और आगे तो ये चीज भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी बताई कि जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे पास आता है, लेकिन यहाँ पर भगवान ने कहा भक्तिमयी पराम कृत्वा, जो परम भक्ति है वो क्या है कि मेरे इस रहस्य को मेरे शुद्ध भक्तों तक पहुंचाना। और आगे भगवान ने यहाँ तक कह दिया न च तस्मान मनुष्येषु कश्चन में प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी उपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना ही कभी कोई होगा। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय के बहुत सारे श्लोक में बताया कि मुझे ज्यादा प्यारा कौन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर 12 टेक्स्ट नंबर 13 से लेकर टेक्स्ट नंबर 20 तक उन व्यक्तियों के विषय में बताया जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान ने 13 में कहा अत्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो न किसी से द्वेष करता है न किसी का पक्षपात करता है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मौज में मन लगाकर तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है वो मुझे अत्यंत प्रिय। और आज भगवान कहते वो तो भक्ति की बात हो रही थी, लेकिन परम भक्ति क्या है मेरे इस रहस्य को मेरे भक्तों तक पहुंचाना। भगवान श्री कृष्ण ने 12:20 में बताया था ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना परमत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः, जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करता है और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। यानी कि जो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो 13 से लेकर 20 तक भगवान ने बताया, बोला ये सब करता है और बहुत ही श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में लगा रहता है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। इसे भगवान ने कहा भक्तास्ते अतीव अतीव, बहुत ज्यादा, अतीव मना बहुत 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 ज्यादा प्रिय है। लेकिन यहाँ तक तो भगवान ने ये कहा कि जो मेरा ये परम गुह्य ज्ञान मेरे भक्तों को पहुंचाता है, उससे ज्यादा प्रिय ना तो कोई है और ना ही कोई भविष्य में होगा। वास्तव में हम सबका लक्ष्य कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है और वो उसी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है जैसा कि कृष्ण चाहता है। तो हमें हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये परम गुह्य रहस्य हम दूसरों को बताएं। हमारी ये स्टेज नहीं है, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य संभव नहीं है कि हम भगवान के विषय में किसी को बता सकें। हम भगवान के इस श्रीमद् भगवद गीता को समझ सकें और दूसरों को समझा सकें, ये हमारे लेवल की बात नहीं है। लेकिन भगवान ये नहीं देखते कि आप किस लेवल पे हो, भगवान ये देखते हैं कि आपकी इच्छा क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7.21 में, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया तुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव वेदधाम्यहम्। आपकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा वैसा एटमॉस्फेयर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप शराबी बनना चाहते हो तो शराबियों का आपको मेल हो ही जाएगा, आपको शराबियों से मुलाकात करा ही दूंगा। अगर आप भक्त बनना चाहते हो तो भक्तों के साथ आपकी मुलाकात हो ही जाएगी। आप अपनी श्रद्धा की तरफ, श्रद्धा जो है ना उसके ऊपर आप देखो, फोकस करो कि आप क्या चाहते हो। वरना तो वाकई में अगर देखा जाए तो बहुत कठिन है प्रचार करना, किसी को बताना बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन जब शुरू शुरू में मेरा इतना मन करता था, जब मैंने ये श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़े थे तो मुझे ऐसा लगा कि और कोई साधन नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता को ही दूसरों को पढ़ के बता दिया जाए। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस इतने, अब गृहस्थ लाइफ में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, घर को देखना होता है, किड्स को देखना होता है, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे कराची में लोगों का एक दूसरे गैदरिंग मतलब गेट टुगेदर एकदम इम्पॉसिबल है। इतनी दूर दूर घर हैं कि आने जाने में पूरा दिन लग जाता है, तो फिर घर पे प्रीच करना एकदम संभव नहीं, और बाहर जाके निकल के उसकी परमिशन नहीं। फिर मुझे ऐसा लगता था कि ये कृष्ण का प्रेम हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन एक मन में इच्छा होती थी, क्योंकि मेरे शिक्षा गुरु ने कहा था कि जब आपके घर पे घोर नेता आ गए हैं ना, आप देखना ये कुछ ना कुछ करवाएंगे आपसे। ऐसे जब ये दो भाई जहां पर जाते हैं तो वो जरूर कुछ ना कुछ करते, चमत्कार जैसा। तो मैंने कहा हमारी लाइफ है तो ये तो एकदम शेड्यूल बना हुआ है, उसमें क्या चमत्कार होगा, उसमें क्या ऐसा कर पाऊंगी मैं किस इनकी सेवा कर सकूं या कृष्ण के प्रेम प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा कर सकूं। लेकिन मन में एक इच्छा जरूर थी और रोजाना भगवान से ये प्रार्थना करती थी कि मुझे किसी तरह से यूज करो ना, कितना यूजलेस मेरा जीवन है, किसी कार्य का नहीं है, कभी कोई अच्छी सेवा नहीं कर पाती मैं जिससे आपको मैं प्रसन्न कर पाऊं, कुछ ऐसा करो मुझे यूज करो। वास्तव में हम इस योग्य नहीं है कि हम भगवान को किसी को दे सकें या भगवान की भक्ति या भगवद गीता के विषय में, लेकिन ये भगवान की कृपा होती है जब हम प्रचार कर सकते हैं या फिर किसी को भगवान के विषय में बता सकते हैं। मैं रोजाना भगवान को कहती थी कि अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना वो कभी भी इतना उसका कोई कमाल नहीं होता, जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करने वाला कारीगर होता है ना कमाल सारा उसका होता है, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा होता है वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब अच्छा कारीगर उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है तो उससे उसके जरिए बहुत कुछ करवा सकता है। तो हमें हमें क्या करना है, निमित्त बनना है बस, जैसा भगवान हमें यूज करे, हमें बस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह अपने आप को गुरु और गौरंग को सौंप देना है कि आप जैसे चाहो मुझे यूज करो। और जब गुरु और गौरंग के एक्सपर्ट हाथों में आप आ जाते हो तो फिर वो यूज करते हैं तो फिर चमत्कार हो ही जाता है। किसी ने, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे और इतने सारे डिवोटीज, इतने सारे ग्रुप्स में भगवद गीता को श्रवण करेंगे, सुनेंगे, श्लोक्स को उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, इतने अच्छे तरीके से गीता का ये प्रचार होगा और कैसे भगवान श्री कृष्ण को ऐसे खुश करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। सिर्फ श्रद्धा और विश्वास है कि भगवान जो है वो जरूर कुछ न कुछ हमसे करवाएंगे। कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं, आप जैसे चाहो हमें यूज करो। हमारा मकसद, हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है कि हम आपके प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया ना कि इसी तरीके से आप मेरा प्रेम प्राप्त कर सकते हो, इससे ज्यादा मेरा और कोई प्रिय नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सिंसियरिटी होनी चाहिए भगवान के प्रति कि मैं चाहती हूँ, अब आप जैसे मुझसे करवाना चाहो तैसे करो। क्योंकि भगवान कहते केवल भक्ति से ही मुझे समझा जा सकता है। अब भक्ति जो है वो हमारे लेवल से बहुत ऊपर की बात है, क्योंकि हम भक्ति इतनी, भक्ति के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उतने अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते। लेकिन भगवान ये देखते हैं कि आपके अंदर श्रद्धा कितनी है, आपका प्रयास कितना है, आप कितना करना चाहते हो, आप कितना कर सकते हो, ये नहीं, क्योंकि कर सकने वाली बात तो बहुत आगे हो जाती है, लेकिन आप कितना करना चाहते हो, आपके अंदर कितना हृदय में भाव है कि मैं ये करना चाहता हूँ, फिर भगवान उसी लेवल से आपको प्रोवाइड करते हैं सारी चीजें कि इस तरह से आप करो, इस तरह से करो। क्योंकि भगवान ने कहा ददामि बुद्धि योगम दम, मैं बुद्धि उसको ही देता हूँ जो कंटिन्यूअस मेरा भजन करता है, जो कंटिन्यूअस ये सोचता है कि मैं कैसे कृष्ण की सेवा करूं। मैं हमेशा सोचती थी कि ये भगवान ने क्यों कहा कि केवल भक्ति मुझे समझ सकते हैं, दूसरे जो इतने बड़े ज्ञानी हो वो नहीं समझ सकते, भक्त भले बुद्धू हो वो भी समझ सकता है। तो भगवान इसलिए, भक्त केवल उसको समझ सकता है क्योंकि भगवान को समझना इम्पॉसिबल है। अब जब भगवान को समझना इम्पॉसिबल है तो फिर भक्त उसे कैसे समझ सकता है? भक्त इसलिए समझ सकता है क्योंकि जब भक्त की सिंसियरिटी को भगवान देखता है, भक्त के भाव को, श्रद्धा को जब भगवान देखता है तो स्वयं प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि भक्त के अंदर वो क्वालिटीज आ जाती हैं कि भगवान को समझ सके, नहीं, भगवान स्वयं खुलकर प्रकट हो जाते हैं कि मैं ऐसा हूं। तो भगवान जब उसके सामने प्रकट हो जाते, खुद को, अपने आप को अपने भक्त के अधीन कर देते हैं, उनके सामने पूरा का पूरा अपने आप को बता देते कि मैं ऐसा हूं, तो उसको समझ जाते। लेकिन जब तक भक्त नहीं बनते, हम अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं और ज्ञानी बन के भगवान को समझने का प्रयास करते, तब तक भगवान प्रकट नहीं होते हैं। तो भगवान को समझने के लिए पहले भक्ति, और भक्ति में खाली श्रद्धा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रद्धा कि भगवान की सेवा करनी है मुझे, एक उत्साह हो कि मुझे भगवान कृष्ण को, कृष्ण का प्रिय बनना है, मुझे कृष्ण के प्रिय बनने के लिए कोई अच्छा कार्य करना, ये यदि उत्साह होगा ना तो भगवान स्वयं करवाएंगे। उसके लिए, कार्य के लिए हमें ये नहीं सोचना है कि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, मुझे इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, घर में इतना सब है, मैं ये कार्य नहीं कर सकती। जब आपने ये सोच लिया कि मैं ये कार्य नहीं कर सकती तो भगवान सोचेंगे ठीक है बेचारी कर ही नहीं सकती तो क्या कर सकती। लेकिन सिर्फ हमारा जो वे ऑफ सोचने का जो है ना कॉन्शियसनेस, ये है कि हमें भगवान की सेवा करनी, भगवान मुझे पता है मैं नहीं कर सकती हूँ, सिचुएशन ऐसी नहीं है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं, लेकिन मुझे करना है, आप मेरी सहायता करो। बस जब उसने ये सुन लिया कि आप करना चाहते हो और आप कृष्ण की सहायता मांग रहे हो, फिर भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। आप अपनी तरफ से सिंसियर रहो, भगवान कहते हैं अपनी तरफ से आप सिंसियर रहो और उसके बाद मैं अपना कार्य करूंगा, मैं किसी न किसी तरह से आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूंगा कि आप मेरे प्रिय बन सको। ये भगवान की ड्यूटी हो जाती है कि आपकी श्रद्धा को पूरा का पूरा सहयोग प्रोवाइड करें। तो ये भगवान जो है वो कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं जब कृष्ण की कृपा हो जाए हम पर, गुरु और गौरंग की कृपा से कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। बस हमारे अंदर जो विश्वास और श्रद्धा उत्साह है ना, उसको हमें बढ़ा के रखना है। और आज भगवान हमें क्या बता रहे हैं, अध्येष्यते चाहिए इमाम। अध्येष्यते का मतलब होता है जो इसका पाठ करता है, जो भगवान के इस पवित्र शब्दों को पढ़ता है। वो भगवान कहते हैं कि मैं ये घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। कितना इम्पोर्टेंट बताया है श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, भगवान कहते हैं बुद्धि से मेरी पूजा करता है। अच्छा, भगवान ने ये नहीं कहा कि जो इसको पढ़ के समझ जाता है वो पूजा करता है, भगवान ने बस बोला रीडिंग। अध्ययन का मतलब होता है रीडिंग करना। ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर थे तो श्रीरंगम में एक अनपढ़ ब्राह्मण था, वो उसको उसके गुरु महाराज ने यह आदेश दिया था कि आप रोजाना श्रीमद् भगवद गीता के 18 चैप्टर डेली आपको पढ़ने हैं, बस डेली आपको पढ़ने। तो वो जो ब्राह्मण था, वो अनपढ़ था, उसको सही तरह से पढ़ना नहीं आता था, बहुत सारे श्लोक्स का उच्चारण भी गलत करता था, मतलब उसको उच्चारण नहीं करना आता था, वो सही तरह से पढ़ता नहीं था। लेकिन मतलब जो उसके गुरु महाराज ने उसको क्या दिया था, ये आदेश दिया था कि आपको डेली श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय पढ़ने हैं। तो वो रोजाना श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय पढ़ता था, उसको बहुत सारी चीजों का मतलब नहीं आता था, बस उसने ये रूल बना दिया था कि रोजाना मुझे भगवद गीता पूरी पढ़नी है। तो पढ़ता था और गंगा के किनारे बैठकर पढ़ता था, रोता रहता था, पढ़ता था, रोता था, उसके आंखों से आंसू थमते नहीं थे। तो जो दूसरे लोग उसको देखते थे, क्योंकि दूसरे वहां पर नवद्वीप में सारे पंडित रहते थे और उनको सबको पता था कि ये तो इतना बेवकूफ है, इसको तो सही तरह से आता भी नहीं पढ़ना, और ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था, यानी कि दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है। अब एक चीज आपको समझ में ही नहीं आ रही है तो उसमें आपका भाव प्रकट होना बिल्कुल संभव नहीं है, भाव कैसे प्रकट होना है। तो वो सब उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसके आंसू थमते नहीं थे जब वो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ता था। एक दिन महाप्रभु वहां से निकले, वहां से महाप्रभु जा रहे थे तो उसको देखा कि श्रीमद् भगवद गीता पूरी पढ़ रहा है और आंसू निकल रहे हैं, गीता भी भीग रही है पूरी। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा, बोला इतना प्रेम, इतना भाव गीता के शब्दों में। वो देख कर बोला उस ब्राह्मण को, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये श्रीमद् भगवद गीता में ऐसी कौन सी बात आपने पढ़ी जिसकी वजह से आपको इतना आपके हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, ये दिव्य प्रेम की लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, आप कब कभी आपके अंदर छा रही है, आप अपना संतुलन नहीं बरकरार रख सक रहे हो, आपको इतना रोना आ रहा है, आंखों से अश्रु धाराएं बह रही हैं, वाणी रुद्ध हो रही है, तो ये कैसे आप, क्या आपको ऐसा भगवद गीता में दिखा, आप मुझे वो मुझे श्लोक बताओ जिसकी वजह से आपकी ये दशा हो रही है। तो फिर उस ब्राह्मण ने कहा, महाप्रभु मुझे तो श्लोक समझ में ही नहीं आते हैं, मुझे तो ये श्लोक पढ़ना भी सही तरह से नहीं आ रहे हैं। तो महाप्रभु ने बोला, जब तुम्हें पढ़ना नहीं आ रहे हैं तो फिर ये कैसे आप कर रहे हो, इतना आपके अंदर ये प्रेम के विकार कैसे उत्पन्न हो रहे। बोला जब मैं भगवद गीता को हाथ में उठाता हूँ और मैं उस सीन को याद कर रहा हूँ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के सारथी बन गए हैं, उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो भगवान की ये करुणा के विषय में सोचकर, भगवान की ये उदारता के विषय में सोचकर, मैं खुद ब खुद मेरे आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं कि जब भगवान के हाथ में डोर सौंप दी जाती है तो फिर हमारे जीवन में कभी भी कोई हानि संभव नहीं है। तो कृष्ण की ये उदारता, ये करुणा के बारे में सोचकर मुझे ऐसा लगता है बस खुद ब खुद मेरे अंदर ये प्रेम के दिव्य लक्षण उदय होने लगते हैं। महाप्रभु ने कहा, बस यही है, यही तो है, आपने ही श्रीमद् भगवद गीता को सही तरह से समझा है, यही गीता की शिक्षा है कि कृष्ण के प्रति आप आकर्षित हो जाओ, आपको यही समझना था। और गीता, सिर्फ गीता पढ़ने से, यानी कि उसको समझा ही नहीं, और गीता के दिव्य जो उसका पर्पज है कि कृष्ण के प्रति प्रेम का आगार होना, वो स्वयं ही हो गया। तो आज भगवान हमें गीता के पढ़ने के महत्व के विषय में बता रहे हैं।